الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس خطبے اور ان دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی درس قرآن کی کلاس شروع کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 جو ابھی تلاوت کی گئی، تو ان کا ہم نے ترجمہ پچھلی کلاس میں یعنی پچھلے ہفتے پڑھ لیا تھا، اور خلاصہ تفسیر بھی پڑھ کے مکمل کر لی تھی. معارف القرآن کی جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہوتی ہے، اور اس کے ہم معارف مسائل میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں. آج آپ کے سامنے امید ہے کہ سکرین کے اوپر بھی یہ ڈسپلیڈ ہوں گے. تو بس تھوڑا سا ریکیپ کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جرم اور سزا کے چند قرآنی ضابطے بیان فرمائے ہیں. ضابطے، اصول، قواعد، قانون، ٹھیک ہے، ان کو ضابطے بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی پھر تمہید ہم یہیں سے پڑھ لیتے ہیں، تو مسائل سے ہی، کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پرانی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب. عجیب و غریب انقلابی اسلوب، کہ عجیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو سن کر کے یا دیکھ کر کے نا انسان کو ایک عجیب بات لگے. تو عجیب کے لیے اور کیا ہوگا؟ عجبا یجیب، یعنی ایک عجب کی کیفیت، لیکن یہ اس معنی میں آف کورس نہیں ہے. عجب کی کیفیت تو ایک روحانی بیماری جیسے کہلاتی ہے، تو عجیب لگے آپ کو جیسے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے. چلیں آگے. غریب، غریب جو ہوتا ہے، ہاں تعجب، جزاکم اللہ، کام نہیں کرتا مدد فرما رہے، تعجب، ٹھیک ہے، تعجب ہو جس کو سن کر کے. اور غریب جو ہے نا وہ ایسی چیز جو کہ عام طور پہ آپ کو نہیں نظر آتی ہو، ٹھیک ہے، بہت کم ہو جائے، ٹھیک ہے. جیسے اسلام جو شروع ہوا تھا، نبی علیہ وسلم فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً، کہ ایک بہت ہی انوکھی قسم کی چیز جس سے لوگ فیملیئر نہیں تھے، ایسا جو ہے وہ اسلام شروع ہوا تھا، اور پھر بعد میں پلٹ کر کے وہ اسی شکل میں چلا جائے گا جیسے کہ وہ شروع ہوا تھا. یعنی لوگوں کے لیے پھر سے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی، انوکھی قسم کی، سٹرینج قسم کی چیز بن جائے گا اسلام. ویسے تو آج کل دین کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں، تو پھر کون سے والے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اصلی اسلام کی، ٹھیک ہے. ہواؤں والا اسلام تو الگ ہوتا ہے نا، جو ہواؤں میں اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل اسلام جو ہے نا وہ تو پھر بہت کم موجود ہے. تو خیر، قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی، عجیب و غریب انقلابی اسلوب، یعنی اس کا جو کیا طریقہ ہوتا ہے انقلابی، ایک انقلاب پیدا کر دینے والا. تو فرماتے ہیں کہ پہلی آیتوں میں حابیل کا واقعہ قتل اور اس کا جرم عظیم ہونا مذکور تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلا قتل ہوا زمین کے اوپر، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا زمین پر، تو ان سب کا گناہ جو ہے وہ حابیل کو جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ کی ابتدا کری تھی، ٹھیک ہے، بنی نوع آدم میں اس گناہ کی ابتدا حابیل نے کری. تو جو بھی گناہ کی ابتدا کرتا ہے تو پھر بعد میں کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سب کا بھی اسی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیکی کے کسی کام کی کوئی ابتدا کرتا ہے تو جتنے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان سب کا جو ہے نا وہ ثواب بھی ابتدا کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو جرم عظیم مذکور تھا پچھلی آیات میں نا، پھر مذکورہ آیات میں اور ان کے بعد قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی और चोरी के शर की शरई सजाओं का बयान है। ठीक है, डाका और चोरी की सजाओं के दरमियान खौफ खुदा और बजरिया ताआत उसका पुर्ब हासिल करने की तलकीन भी है। ठीक, जहां पर सजाओं का बयान है तो वहीं पर अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल किया जाए, अल्लाह ताला की अताआत के जरिए से। ठीक है, तो वो भी बीच बीच में उसकी तलकीन की जा रही है। ठीक है, सूरह मायदा जो है, जैसे कि हम शुरू पढ़ते आ रहे हैं, पहली आयत से जो है ना, वो इसके अंदर एक तो ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातब फरमाते हैं, यानी जो लोग नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं, दिल से भी इसका तस्दीक कर चुके हैं, वो ईमान वाले होते हैं ना। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ये पहली आयत का पहला हिस्सा था कि अपने वादों को पूरा करो, यानी अहकामात शुरू हो गए। सूरह मायदा के अंदर शुरू से अहकामात अल्लाह ताला के शुरू हो गए। ठीक है, बाकी सूरतों में और भी चीजें होती हैं जिनसे केवल सूरतें शुरू होती हैं, वही चलती रहती हैं, लेकिन इसमें अहकामात के ऊपर बहुत ज्यादा, यानी गालिब अक्सरियत अहकामात की है। तो वही यहाँ पर भी चल रहे हैं कि सजाओं के अहकामात अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फरमाते हैं कि कुरान करीम का ये असलूब, यानी ये तरीका कलाम, ठीक है, निहायत लतीफ तरीके पर जहनी इनकलाब पैदा करने वाला है। ठीक है, यानी इंसान की जहन का जो सोच होती है ना, उसको पलट देने वाला। ठीक है, इनकलाब जो है वो कल्लबा युकल्लिबु, बल्कि इनकलबा यनकलिबु इनकलाबन। ठीक है, पलट के किसी चीज को पलट देने के मानी में इस्तेमाल होता है ना। तो ये जो तरीका बयान है कुरान मजीद का, जहन में इंसान के इनकलाब पैदा कर देता है कि वो दुनिया की ताजीरात की किताबों की तरह सिर्फ जुर्म और सजा के बयान पर किफायत नहीं करता, बस नहीं करता इसके ऊपर कि भाई इस जुर्म की ये सजा है और इस जुर्म की ये सजा है और जिस जुर्म की ये सजा है। जैसे कि दुनिया में ताजीरात की किताबें होती हैं, ताजीरात का मतलब क्या होता है, सजाएं। ठीक है, यानी वो काम जो आप किसी के साथ करते हैं ना, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको अदब सिखाने के लिए, ठीक है, या उसको उसकी गलती को ठीक करने के लिए, लेकिन जरा सा स्ट्रिक्ट तरीके से, सख्ती के साथ। ठीक है, तो उसके लिए लफ्ज जो है ना, वो ताजीर इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, अज़रा युअज़िरु ताजीरन, बाबे तफ़ईल से है ये, सर्रफ युसर्रफु तसरीफन वाले बाब से, अज़रा युअज़िरु ताज़ीरन। तो ताज़ीर का मतलब होता है टू रिब्यूक समथिंग, टू रिब्यूक समवन। ठीक है, चैस्टाइज करना उसको, यानी ऐसी सजा देना कि कोई के अलग कर देना या कोई और इस किस्म की सजा देना। तो सजाओं की जो किताबें होती हैं, जिनको कवानीन की किताबें भी कहा जाता है, तो उनमें सिर्फ जुर्म सजा का बयान होता है। ठीक है, लेकिन कुरान मजीद ऐसा नहीं करता। ठीक है, बल्कि हर जुर्म व सजा के साथ खौफ खुदा वह आखिरत मुस्तहजर के इंसान का रुख एक ऐसे आलम की तरफ मोड़ देता है कि जिसका तसव्वुर उसको हर ऐब व गुनाह से पाक कर देता है। एक ऐसे आलम की तरफ, कौन से वाले आलम की तरफ, आखिरत के आलम की तरफ। ठीक है, क्योंकि आलम जो है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बुनियादी एक क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप आलम की करें, तो एक आलमुल अरवाह है कि जिसमें हमारी रूहें अल्लाह ताला ने जब तख्लीक करी तो उन सबको आलम अरवाह के अंदर स्टेशन कर दिया। ठीक है, गोया के फिर वही क्रिकेट वाली बात है, मैं सोच छोड़ता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ती क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर होता है ना कि एक तो ग्राउंड होता है और एक होता है पवेलियन, उसके अंदर जो है ना वो बैट्समैन जो है वो वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, कि जो बैट्समैन अभी बैटिंग कर रहा है तो वो आउट होगा तो फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो गोया के आलमुल अरवाह जो है वो पवेलियन की मानिंद है, उसमें रूहें जो होती हैं वो वेट कर रही होती हैं कि जब उनको इस दुनिया में भेजा जाएगा। फिर वहां से जब उनको भेजा जाता है तो वो आलम दुनिया में आ जाती हैं, जिसमें अभी हम और आप मौजूद हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कोई आलम बरजख या आलम अरवा वाला यहाँ पे जूम पे मौजूद नहीं होगा, राइट? तो सब आलम दुनिया के वाले हैं क्योंकि मौजूद हैं। फिर इस दुनिया से किसी ना किसी वक्त हमने आलमे कबर के अंदर चला जाना है, जिसको आलमे बरजख भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर आलमे बरजख जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आलमे आखिरत के अंदर, ठीक है, जो कि बिल्कुल आखिरी आलम होगा, आखिरत आखिरी आलम, ठीक है। तो वहां पे सबको जो है दोबारा से खड़ा किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, वहां पे हिसाब किताब, असल हिसाब किताब वहां पे शुरू होगा। तो कुरान मजीद जो है ना, ये एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ताला ने रखी, लेकिन ये साथ साथ पढ़ने वाले की जो तवज्जो है वो बहुत ज्यादा दो चीजों की तरफ, कम से कम दो चीजों की तरफ हर वक्त मबजूल कराता रहता है, हर वक्त जो है ना वो करता रहता है, तवज्जो उस तरफ माइल करता रहता है। एक चीज क्या है, एक कौन सी वाली बात, अल्लाह, ठीक है, जो इस कुरान का मुतकल्लिम है, ठीक है, जिसका ये कलाम है। तो हर वक्त कुरान मजीद जो है ना वो बातों बातों में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बात, अल्लाह की तरफ तवज्जो ये करता रहता है कुरान मजीद, ठीक है। जबकि दूसरी, अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल किस्सा पढ़ें, हमने सूरह सूरह यूसुफ के अंदर ये बात बहुत ज्यादा देखी। भाई सूरह यूसुफ क्या है, एक किस्सा है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ना। तो आम कहानी की किताब में अगर आपने पढ़ी होंगी, जो एक बहुत अच्छी और सबसे डिसेंट हमारी कहानी की किताबें हैं, वो इश्तियाक अहमद मरहूम की, ठीक है, वो सस्पेंस नॉवेल्स वगैरह, तो वो जो भी नॉवेल हो, जो भी कहानी किताब हो, उसमें राइटर का जिक्र नहीं आता रहता बीच में, ठीक है ना। वो तो एक कहानी का प्लॉट होता है जो कि शुरू से लेकर के आखिर तक सनसनीखेज अंदाज में जो है वो राइटर लिखता है, अपना जिक्र को थोड़ी उसमें करता रहता है। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें कहानियां भी बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन कहानी के हर दूसरे तीसरे पांचवें सातवें सतर के ऊपर, लाइन के ऊपर अल्लाह ताला का जिक्र, और उसी तरीके से दूसरी चीज आखिरत का जिक्र, ठीक है। तो बीच बीच में आखिरत, अब सदा की बात हो रही है लेकिन साथ जो है वो आखिरत का भी तस्करा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कुरान जो है ना, ये एक ऐसी स्पेशल किताब है, दूसरी किताबों से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो एक मोमिन जो है वो चूंकि उसकी जिंदगी होती ही फोकस्ड टूवर्ड्स अल्लाह है, ठीक है, और आखिरत वो जगह है कि जहां पे अल्लाह का उसको दीदार मिलेगा, ठीक है, और उसके आमाल की जजा और सजा होगी, तो उसके लिए तो ये सबसे अहम चीज है कि उसका दिमाग जो है, उसका जहन जो है, वो कभी भी इन दो बातों से गाफिल ना हो जाए, ठीक है, कि वो किसी और काम में लग जाए और अल्लाह की तरफ से उसका ध्यान हट जाए। और आखिरत की जजा और सजा की तरफ से उसका ध्यान है, चाहे वो काम जो है वो हराम काम हो कोई जिसका के मना फरमाया गया है, या हलाल काम हो, हत्ता के कोई इबादत का काम हो, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इबादत कर तो रहा है लेकिन आखिरत का ध्यान नहीं है उसके अंदर और अल्लाह का ध्यान नहीं है उसके अंदर, बस इबादत कर रहा है। तो फिर ऐसी इबादत को क्या कहते हैं, इसको फिर रिचुअल्स कहते हैं, ठीक है ना। बस आपने कुछ फिजिकल आमाल, कुछ हरकतें कुछ लोगों से सीखनी है, ठीक है, और आप किसी वजह से भी इस बात के ऊपर एग्री हो गए, यहां भाई उनकी जो ये हरकतें हैं ना, ये मुझे भी करनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों, मे बी फॉर दैट रीजन कि वो लोग आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, तो चूंकि क्लोज फैमिली मेंबर्स वो वाली हरकतें करते हैं, इस वजह से मुझे भी करनी चाहिए, ठीक है। या आपकी उन लोगों से दोस्ती हो गई, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है लेकिन आपके उनसे दोस्ती हो गई है, तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी तरीके से दोस्त को देख करके दोस्त जो होता है वो भी उससे जैसे जैसे अमल करना शुरू कर देता है, ठीक है, टू टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, टू बी पार्ट ऑफ द गैंग, ठीक है। तो अब वो सब नमाजें पढ़ रहे थे तो इस दोस्त ने भी नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये भी रीजंस हो सकती हैं इबादत के अफाल करने की, लेकिन ये मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद क्या है कि ऐसी इबादत हो जिसमें अल्लाह का ध्यान हो और आखिरत की खातिर वो इबादतें हो रही हो ना, ठीक है, तो दूसरे अमाल तो क्या, इवन इबादत भी जो है वो अल्लाह और आखिरत के ध्यान से खाली नहीं होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इंसान कभी मशगूल होकर के जहन से बात निकल जाती है, लेकिन फिर वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, कि तुम अगर अल्लाह को भूल जाओ तो फिर से जो है वो तो याद करना शुरू कर दो, ठीक है। यानी ये प्रोसेस, भूलने का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन वापस वापस, तो वापस कैसे आएंगे, जब कोई रिमाइंड कराएगा तब वापस आएंगे ना, वरना भूल गए तो फिर अब भूल की तरफ ही चलते चले जाएंगे, गफलत के साथ ही चलते चले जाएंगे, तो फिर आपको रिमाइंडर कौन कराएगा। तो रिमाइंडर कराने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए अल्लाह ताला ने दो जरिए बनाए हैं, एक किताबुल्लाह और एक रिजालुल्लाह, एक किताबुल्लाह और एक रिजालुल्लाह, ये रिमाइंड करवाते हैं जब इंसान गफलत में चला जाता है ना, भूल जाता है आखरत को या अल्लाह ताला को, तो ये दो चीजें जो होती है ना, ये इसको याद दिलाती हैं। अब रिजालुल्लाह हर वक्त हो सकता है आपके घर में मौजूद ना हो, लेकिन किताबुल्लाह तो आपके घर में मौजूद हो सकती है ना, ठीक है। मार्केट से खरीद करके ले आए या मस्जिद से उठा करके ले आए, अगर मस्जिद में अवेलेबल है कि भाई आप घर लेके जा सकते हैं, मस्जिद से उठा करके ले आए, ठीक है। या आजकल तो इवन स्क्रीन के ऊपर भी किताबुल्लाह मौजूद है, ठीक है। रिजालुल्लाह तो स्क्रीन के ऊपर, वो तो दूसरे तमाशे शुरू हो गए ना एआई वाले, ठीक है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर रिजालुल्लाह से जो है वो ऐसी टू टू वे इंटरेक्शन नहीं होती, सिवाय इसके कि आप कर रहे हो व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हो या इस तरह की क्लास के अंदर कर रहे हो, वरना तो वो वन वे होती है, ठीक है। तो रिजालुल्लाह जो है ना, वो अक्सर घर के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, या मौजूद होना बहुत मुश्किल और बहुत कम होता है, लेकिन किताबुल्लाह तो मौजूद है ना, ठीक है। तो किताबुल्लाह को जो पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, तफक्कुर करता है उसके ऊपर, तो वो अल्लाह ताला से फिर गाफिल नहीं रह सकता, क्योंकि किताबुल्लाह उसको हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती रहती है, आखिरत की तरफ पॉइंट करती रहती है, ठीक है। तो यही फरमाया कि कुरान मजीद जो है ना, ये सिर्फ जुर्म और सजा के बयान पर किफायत नहीं करता, बल्कि हर जुर्म और सजा के साथ खौफ खुदा व आखिरत मुस्तहजर करके, खौफ खुदा का मतलब अल्लाह की नाराजगी का खौफ, अल्लाह ताला की सजा का खौफ, अल्लाह ताला के अजाब का खौफ, अल्लाह ताला की जात का खौफ नहीं, क्योंकि जात जो है अल्लाह ताला की, वो तो ऐसी है कि किसी को उसकी जात का जो है ना, वो अगर इदराक हो जाए तो वो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत, कुछ नहीं है उसके बाद फिर मोहब्बत के अलावा, ठीक है। तो खौफ अल्लाह की जात का नहीं है, अल्लाह अल्लाह का खौफ नहीं है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का खौफ है, अल्लाह के अजाब का खौफ है, कि उसने जो नेमतें दी हुई हैं वो नेमतें हमसे वापस भी ले सकता है अल्लाह ताला, जैसे उसने बहुत सारे लोगों से वापस ली है और आज भी लेता है, तो हमसे भी नेमतें वापस लेगा, इसका खौफ, ठीक है। तो खौफ खुदा, खुदा व आखिरत, यानी आखिरत की सजा का खौफ मुस्तहजर करके आपके सामने गोया के पेश करके, मुजस्सम करके आपके सामने हाजिर कर देता है इन चीजों को, ठीक है। इंसान का रुख एक ऐसे आलम की तरफ मोड़ देता है कि जिसका तसव्वुर उसको हर ऐब और गुनाह से पाक कर देता है, ठीक है। ये जहन में जब तसव्वुर बन जाता है, तो फिर उसके आमाल उसके तसव्वुर से फिर गाइडेड होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह क्लास के अंदर हैं, तो खैर माशाल्लाह बच्चे नहीं कहना चाहिए, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े भी हो गए सारे। तो आप लोगों से बात हो रही थी कि इंसान के जहन में जो सोच आती है ना, तो उसके बाद फिर वो अमल करता है उस सोच की बुनियाद पर, जैसे क्लास में बात हुई थी ना पिछले हफ्ते, कि जब आपको भूख की सोच आती है, पेटू शरीफ से वो उठती है, दिमाग शरीफ में पहुंचती है, तो फिर भूख की सोच आती है, तो फिर आप क्या करते हैं, उठ के खाना तलाश करते हैं, और जहां मिल जाता है फिर आप खा लेते हैं उसको। तो ऐसे तो नहीं आप खाना खा लेते हैं ना, पहले सोच भूख की आती है तो फिर आप खाना खाते हैं, ठीक है, या तलाश करते हैं फिर खाते हैं। उसी तरीके से जो जहन की सोच होती है ना, तो उसके मुताबिक फिर इंसान के अमाल हो जाते हैं। तो जब जहन में आखिरत के जजा और सजा की सोच हो और अल्लाह ताला का ध्यान हो, तो फिर इंसान के अमाल भी उसी हिसाब से बन जाते हैं, तो ऐब और गुनाह से फिर वो दूर भागता है। और अगर हालात तो वाकयात पर गौर किया जाए, तो साबित होगा कि खौफ खुदा व आखिरत के बगैर दुनिया का कोई कानून, पुलिस और फौज, दुनिया में इंसदादे जराइम की जमानत नहीं दे सकते। ठीक है कि भाई फौज बड़ी ताकतवर हो गई, पुलिस बड़ी ताकतवर हो गई, या कानून बड़ा सख्त हो गया, तो अब जो है ना ये जुर्म खत्म हो जाएंगे मुआशरे से। ठीक है, बल्कि खत्म करने के लिए तो ये इंडिविजुअल लेवल का जो एहसास है ना, यही जमानत देता है कि हाँ वाकई खत्म हो सकता है जो। ठीक है, और खत्म का मतलब वही होता है कि यानी 99% खत्म हो जाएगा, एक दो एक्सेप्शन जो है ना वो फिर भी रहती हैं, लेकिन 98% 99% ये चीजें फिर मुआशरे से खत्म हो जाती हैं जब ऐसा ऐसी सोच पैदा हो जाती है इंसानों में। पुराने करीम का यही असलूब हकीमाना और मुरब्बियाना तर्ज है जिसने दुनिया में इनकलाब बरपा किया और ऐसे इंसानों का एक मुआशरा पैदा किया जो अपने तकद्दस में फरिश्तों से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। सहाबे कराम का मुआशरा पैदा किया, ठीक है, और उनके बाद ताबिरीन का मुआशरा पैदा किया, फिर तबा ताबिरीन का मुआशरा पैदा किया, और उसके बाद भी कई 100 साल तक ऐसे मुआशरा दुनिया के अंदर मौजूद रहा कि जिसमें ऐसे लोग मौजूद थे, मर्द भी और औरतें भी, ठीक है, कि जो कि फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम रखते थे। फरिश्तों से मुराद यहां पर जो आम फरिश्ते होते हैं, ठीक है, जो खास फरिश्ते हैं ना, जो जिब्राइल, मीकाईल और इजराइल और इसराफील, तो उनसे तो ऊंचा इंसान नहीं, आम इंसान नहीं होते, उनसे ऊंचे कौन होते हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं। ठीक है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे बुलंद मखलूक है अल्लाह ताला की, उनके बाद ये उलुल अजम फरिश्ते हैं, और उनके बाद अल्लाह के वली इंसान हैं। ठीक है, जो औलियाए कराम होते हैं उनका दर्जा इन खसूसी फरिश्तों से नीचे आता है, और इनके नीचे फिर बाकी फरिश्ते आते हैं। ठीक है, तो फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। ये औलिया कराम जो है ना, ये गोया के किसी शायर ने लिखा और हमारे हजरत उस शेर को बयान किया करते थे कि अल्लाह ताला ने गोया के इनको इसलिए बनाया कि फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनसे कहा था ना कि मैं बनाने वाला हूं एक ऐसी मखलूक, तो फरिश्तों ने पहले देखी हुई थी जमीन के अंदर एक मखलूक जिन्नों वाली और डायनासोर्स वाली, तो वो तो बदमाशी करते रहते थे जमीन के अंदर, जिन भी बदमाशी करते रहते, तो डायनासोर भी जो है वो टी रेक्स किस्म के होंगे, उन्होंने जो खून उनके मुंह से टपकता रहता होगा, काटते मारते रहते होंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि आप क्यों बना रहे हैं, हम आपकी इबादत करते रहते हैं ना, तो ये बनाएंगे तो ये भी फिर वो उसी तरीके से जो है वो खून बहाया करेंगे जमीन के अंदर जा करके। अल्लाह ताला ने कहा आलमू माला तालमून, मुझे पता है जो तुमको नहीं पता। ठीक है, तो मैं जो हूं ना एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूं कि जिसमें ऐसे भी होंगे और वैसे भी होंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर इंसानों को बनाया, और फिर वो जो इंसान होते हैं तो उनमें मर्द भी होते हैं और औरतें कैसी होती हैं कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ऐसी औरतें, ऐसी पाकबाज औरतें होती हैं कि उनका दामन अगर निचोड़ दिया जाए तो फरिश्ते जो है ना वो उस दामन के निचोड़े हुए पानी से वुजू करें। ठीक है, तो या तो वो गुनाह करती नहीं है, या अगर कभी हो भी गया तो उससे ऐसी तौबा करती हैं, ऐसी तौबा करती हैं कि फिर उसके बाद उनका मुकाम जो है ना वो फरिश्तों से भी ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान पर अल्लाह ताला ने बनाए, और ये वाकई ये मुआशरा बना। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जो थे उनका मुआशरा ऐसा ही था, उसके ऊपर अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं अपने कुरआन के अंदर कि वहब्बब इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, कि हमने तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को मुज़य्यन कर दिया, मोहब्बत पैदा कर दी अपने मेरे नबी के ऊपर, एतमाद को तुम्हारे दिलों में मैंने मुज़य्यन कर दिया। ठीक है, और साथ क्या फरमाते हैं, वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, यानी नाफरमानी के हर दर्जे को अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि तुम्हारे दिनों के अंदर ना नफरत पैदा कर दी मैंने, कुफर फिस्क इस्यान। ठीक है, यानी जिस किस्म का भी ये गुनाह और ऐब होता है ना, सहाबा कराम के दिलों में इनसे नफरत थी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं इसके ऊपर, अल्लाह ताला ने स्टैंप लगा दिया। अब जिस कौम के, जिस जमात के दिल में नफरत हो गई हर बुराई से, हर ऐब से, हर गुनाह से, तो वो कर सकती है वो काम फिर। तो जो कहता है कि सहाबा नाउज बिल्ला उन्होंने किया बुरा काम, गुनाह का काम, वो सीधा सीधा कुरान का इनकार कर रहे हैं, सीधा सीधा वो मुनकर कुरान है। ठीक है, इधर अल्लाह कह रहे हैं कि हमने नफरत पैदा कर दी इनके दिलों के अंदर, और भी खाली ये आयत की थोड़ी है, वो तो हमें याद रहती है क्योंकि हम हाफिज़ कुरान नहीं है, तो हम बस ये आयत याद हो गई है इस पर वो पढ़ते रहते हैं। उलाइक हुमुल मुहतदून, राइट, उलाइक हुमुर राशिदून, ऐसी ऐसी सहाबा की शान में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। और फिर ये कोई कहे नहीं, वो तो लड़ते मरते रहते थे और वो तो झूठ बोलते थे और वो तो ये करते थे और वो तो वो करते थे, तो भाई ठीक है तुम जो भी चाहो बोलो, लेकिन तुम कुरान के मुनकर हो, एंड कुरान का इनकार करने वाला फिर कुछ भी रहे मुसलमान नहीं रह सकते। ठीक है ना, कम से कम इस बात को तो इत्तफाक करते हो कि नहीं करते हो कि कुरान का की तस्दीक करने वाला मुसलमान होता है, कुरान का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर इत्तेफाक है मुसलमानों के दरमियान, वरना आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान आपको मिल जाएंगे जिनका नाम अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद होगा, अहमद होगा, लेकिन वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, वो अल्लाह का कलाम नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो अभी भी जो है ना वो देर इज स्टिल चांस के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, और इस बात पे वो आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कुरान मजीद का इनकार करने वाला फिर भी मुसलमान रहेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अभी भी वो वक्त है, एंड लेट्स यूज दिस, है ना, इसकी कदर कर लें इस वक्त की, कि जो गलत फहमियां मुसलमानों में फैल गई हैं या फैला दी गई हैं, तो कुरान मजीद को इस्तेमाल करके उन गलत फहमियों को दूर करें, क्योंकि अभी भी कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम और इस्लाम की बुनियाद मानने वाले लोग मौजूद हैं, अगरचे कि बहुत सारे अब नहीं भी मानते, लेकिन अभी भी उनकी तादाद कम है और मानने वालों की तादाद ज्यादा है। कल को वो वक्त आ गया ना कि जब ना मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप किस बेसिस पे बात करेंगे किसी से कि ये गलत काम है और वो सही काम है, किस बेसिस पे बात करेंगे? वो कहेगा मैं मानते ही नहीं उस कुरान को, बट स्टिल आई एम अ मुस्लिम, तो फिर आप कर लो गल, वो कहते हैं ना कर लो गल, अब करो तुम बात उससे, अब किस बुनियाद पे बात करोगे भाई? वो जो एक कॉमन म्यूचुअल एग्रीड अपॉन चीज है कुरान, जब वो म्यूचुअल एग्रीड अपॉन चीज नहीं रहेगी खुदा ना खास्ता किसी के लिए, तो फिर किस बेसिस पे आप उससे बात करेंगे? तो अभी मौका है कि हम कुरान मजीद को खुद तो पढ़े ना, खुद तो समझे ना, ताकि अगले बंदे को कुरान की बुनियाद पे जो है वो आप कन्विंस कर सके, कुरान की दलील देकर के आप उसको बात समझा सके। ठीक है, जो भी चीजें मुत्तफिकुन अलैह नहीं होती है ना, उनकी बातें करते रहते हैं हम लोग किसी को कन्विंस करने के लिए या किसी से बात करने के लिए, जिसके ऊपर वो एग्रीड अपॉन है ही नहीं, उसको इस्तेमाल करते हैं अगले बंदे को अपनी बात पेश करने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर वो एग्रीड अपॉन है उसको पेश नहीं करते। तो यह हमारी बेवकूफी हुई ना, यह हमारी कम अकली हुई ना, यह हमारी गफलत हुई कि हम कुरान मजीद से गाफिल हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो ये तो हो गया कि ऐसे इंसानों का मुआशरा, तो यानी ऐसे इंसानों का मुआशरा रहा है इस दुनिया में, और बड़े लंबे अरसे तक रहा है, बड़े लंबे अरसे तक रहा है। ठीक है, तो शरी सजाओं की, यानी जो कुरान मजीद ये काम कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे नहीं है कि बस कर तो रहा है लेकिन माना वाना किसी ने नहीं इसको, एंड इट नेवर एक्चुअली वर्कड, इट नेवर एक्चुअली वर्कड, ऐसा नहीं है, इट वर्कड। ठीक है, तो आज भी जो का जो मानने वाले लोग हैं, तो उनके आप घरानों में देखें, ठीक है, उनके घरानों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अल्लाह ताला ने सुकून, इत्मीनान और जन्नत का माहौल पैदा किया हुआ होता है कि जिसका कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मान रहा है उसको अल्लाह ताला ने दुनिया की जन्नत अता फरमाई भी है, और जो नहीं मान रहा उसको दुनिया ही में अल्लाह ताला ने जहन्नुम की जिंदगी अता फरमाई भी है। हमें नजर नहीं आता तो हमारी आंखों का इलाज करने की जरूरत हो, ठीक है, लेकिन है तो ना, ठीक है, जिनको नजर आता है उनसे पूछें तो बताएंगे आपको फिर कैसे कैसे अच्छे वाकयात भी दुनिया में मौजूद है और कैसे कैसे इबरत अंगेज मामलात भी दुनिया के अंदर मौजूद। ठीक है, तो ये बात है, इकरान मजीद जो ये काम करता है ना, ये खाली थ्योरी नहीं है, इट्स इट्स रियल, इट्स प्रैक्टिकल। अच्छा, शरी सजाओं की तीन किस्म, तो फरमाते हैं कि डाका और चोरी की शरी सजाएं जिनका जिक्र आयात मज़कूरा में है उनकी तफसील और मुतअल्लिक आयात की तफसील बयान करने से पहले मुनासिब है कि इन सजाओं से मुतअल्लिक शरी इस्तिलाहात की कुछ वजाहत कर दी जाए। टर्मिनोलॉजीज हैं शरीयत में तो उनकी वजाहत कर दिया, जिनसे ना वाकिफियत की वजह से बहुत से लिखे पढ़े लोगों को भी इश्काल पेश आते हैं। लिखे पढ़े से मुराद जो है जो सेक्युलर एजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए लिखे पढ़े की है कलम इस्तेमाल करें। कुछ लोग उसको पढ़े लिखे कहते हैं और कुछ लोग उसको लिखे पढ़े कहते हैं, लेकिन मकसद यहाँ पर वो है सेक्युलर एजुकेशन, सेक्युलरली एजुकेटेड लोग, ठीक है। तो उनको अरबी भी पढ़नी आती होगी या उनको उर्दू तो कम से कम पढ़नी आती है या बहुत सौ अंग्रेजी भी बहुत अच्छी पढ़नी आती है, लेकिन शरी इस्तराहत उनको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो फिर अंग्रेजी उर्दू अरबी के दौरान नहीं पढ़ाई जा रही होती है, इस वजह से नहीं पता होता। जिनसे नावाकिफियत की वजह से बहुत से लिखे पढ़े लोगों को भी इश्कालात पेश आते हैं दुनिया के इश्कालात, मतलब उनको खामखा के अनईजनेस और एक एतराजी कि भाई ये क्यों, ये क्या, ये वो सीखे ही होता है इन सब बातों को, तो पेश आते रहते हैं। दुनिया के आम कवानीन में जराइम की तमाम सजाओं को मुतलकन ताजीरात का नाम दिया जाता है, वह वो किसी जुर्म से मुतालिक हो, जैसे ताजीरात हिंद, ताजीरात पाकिस्तान वगैरह के नामों से जो किताबें शाया हो रही हैं, वो हर किस्म के जराइम और हर तरह की सजाओं पर मुश्तमिल है। लेकिन शरीयत इस्लाम में मामला ऐसा नहीं है। अजीब, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया था भाई, इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था, इस्लामाबाद जो है वो उसका कैपिटल था। इस्लाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान की तहरीक में भी इंतहाई फाल है उसका हिस्सा थे, तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आजादी जिसको कहा जाता है, और तहरीक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रुकन थे वो। क्या अजीब बात लिख रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है। वो कहते हैं कि ताजीरात पाकिस्तान वगैरह के नामों से जो किताबें शाया हो रही हैं वो हर किस्म के जराइम और हर तरह की सजाओं पर मुश्तमिल है, लेकिन शरीयत इस्लाम, तो ताजीरात पाकिस्तान कोई अलग चीज है और शरीयत इस्लाम कोई अलग चीज हो। अल्लाह आलम भाई, मुझे तो उनके तफसीलात नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ी वाली किताब है। तो शरीयत इस्लाम में मामला ऐसा नहीं है जैसा ताजीरात हिंद में है या ताजीरात पाकिस्तान में है, बल्कि जराइम की सजाओं की तीन किस्में करार दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हम पढ़ते हैं ना, इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि दुनिया में जो जो पीनल कोड्स कहलाते हैं या जो 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 लीगल सिस्टम्स कहलाते हैं, तो उनकी आम तौर पे जो जो कैटेगरी बनाई जाती है ना, वो एक तो सिविल लॉ कहलाती है, ठीक है। वो जो है वो रोमन्स के जमाने की कुछ लॉज हैं, उनकी बुनियाद पर आगे फिर वो मजीद लॉज बनाई गई, तो उसको उसको आमतौर पर सिविल लॉ कहा जाता है। ये दुनिया के हमने हमने थोड़ा सा सर्च मारी इसके ऊपर, तो लिखा हुआ था जी कि कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर जो है वो सिविल लॉ राइज है, ठीक है। और कुछ और भी जगहों पर है, और फिर उसके बाद सिविल लॉ के बाद दूसरी जो है ना वो कॉमन लॉ कहलाती है। तो कॉमन लॉ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है वो बेसिकली बर्तानिया के ही एक्सपेंशन है, वहां से निकल के लोग जो है वो अमेरिका गए, वहां से निकल के जो है वो वहां गए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहलाते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो वहां पर जो है ना वो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ जो है वो भी इसी तरह से इवॉल्व होने वाली लोगों के ज्यूरी सिस्टम वगैरह के जरिए से जो फैसले किए जाते हैं तो उसको कॉमन लॉ कहते हैं। तो एक बहरहाल दो नाम है, सिविल लॉ एक अलग कैटेगरी ऑफ लीगल सिस्टम है और कॉमन लॉ एक अलग कैटेगरी ऑफ लीगल सिस्टम कहलाता है। फिर तीसरा वो है रिलीजियस लॉ। अब रिलीजियस लॉ जो है वो कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, तो शरीयत जिसको कहते हैं इस्लामी लॉ। फिर लीगल सिस्टम जो है वो ज्यूस के पास भी है, ठीक है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम के ऊपर जो तौरात नाजिल हुई तो वो पूरा एक लीगल सिस्टम था उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। इस वजह से ज्यूज की जो लीगल सिस्टम है वो भी रिलीजियस लॉ की एक मिसाल बनती है, अगरचे कि वो एक्सपायर्ड बेशक है लेकिन फिर भी वो रिलीजियस लॉ में आएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर वो कुछ मिक्स्ड किस्म के सिस्टम्स भी हैं जिनके अंदर थोड़ा सा रिलीजियस लॉ या थोड़ी सी कॉमन लॉ या थोड़ी सी सिविल लॉ, ठीक है, या थोड़ी सी कल्चरल कल्चरल लॉ भी होती है, जिसमें जैसे वो जिरगा सिस्टम वगैरह, ये कल्चरल लॉ होती है, ठीक है। तो इस तरह के लीगल सिस्टम दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, चूंकि कुरान मजीद के अंदर जिन सजाओं का या जिन लॉज का जिक्र है, तो वो खालिसतन रिलीजियस लॉ, और वो कौन सी? इस्लाम की रिलीजियस लॉ। तो इस्लाम की रिलीजियस लॉ के मुताबिक जराइम की सजाओं की 3 किस्में करार दी गई हैं, ठीक है। नंबर 1 हुदूद, दूसरी कसास सौत से, और तीसरी ताजीरात। तो ताजीरात जो है ना, वो तीसरी किस्म है शरीयत लॉ के अंदर। इन तीनों किस्मों की तारीफ और मफहूम समझने से पहले एक ये बात जान लेना जरूरी है कि जिन जराइम से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ या नुकसान पहुंचता है, उसमें मखलूक पर भी जुल्म होता है और खालिक की भी नाफरमानी होती है, ठीक है। क्योंकि खालिक का हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो और तुम जो है वो हज करो मेरे घर का जा करके, बल्कि नहीं, खालिक का हुक्म तो मखलूक के हुकूक की हिफाजत करना भी है, ठीक है। तो इस वजह से जब किसी इंसान को तकलीफ या नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो उसमें इंसान पर भी जुल्म करते हैं और खालिद की नाफरमानी भी उसके अंदर होती है। इसलिए हर ऐसे जुर्म में हक़ुल्लाह और हक़ुल्अब्द दोनों शामिल होते हैं, यानी दोनों की वायोलेशन शामिल होती है और इंसान दोनों का मुजरिम बनता है। लेकिन बाज़ जराइम में हक्कुल अब्द की हैसियत, यानी इंसानों के हकूक की हैसियत को ज्यादा अहमियत हासिल है, और बाज में हक्कुल्लाह की हैसियत ज्यादा नुमाया है, ठीक है। मतलब क्या नुमाया या ज्यादा अहमियत का मतलब ये कि बस गालिब या ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो, कुछ के अंदर हकूक लिबाद ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, कुछ के अंदर हकूकना ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और अहकाम में मदारेकार इसी गालिब हैसियत पर रखा गया है, ठीक है, कि भाई किसमें हुकूकुल्लाह ज्यादा गालिब थे, किसमें हुकूकुल इबाद ज्यादा गालिब थे, तो अहकामात भी उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब अल्लाह ताला ने जो रखे हैं वो तो अपनी हिकमत के हिसाब से रखे हैं, लेकिन जो उलमा उस हिकमत को समझ करके आगे बयान करते हैं, तो उन्होंने फिर इसको समझा कि भाई ये जो है ना, ये हुकूकुल्लाह इसमें गालिब था और इसमें हुकूकुल इबाद ज्यादा गालिब थी, तो ये फिर इस वजह से हजरत ने बात लिखी है। तो दूसरी बात ये जानना जरूरी है कि शरीयत इस्लाम ने खासकर ये शरीयत इस्लाम ने खास खास जराइम के अलावा बाकी जराइम की सजाओं के लिए कोई पैमाना मुतय्यन नहीं किया, बल्कि काजी के इख्तियार में दिया है कि हर जमाने और हर मकान और हर माहौल के लिहाज से जैसी और जितनी सजा इंसदाद जुर्म के लिए जरूरी समझे वो जारी करें, ठीक है। यानी कुछ के तो अल्लाह ताला ने एक्सप्लिसिटली बता दिए कि ये सजा होगी अगर ये जुर्म होगा, ठीक है, लेकिन कुछ में जो है ना, वो काजी जज जज और काजी कौन होता है, जिसने शरीयत के इल्म को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हासिल किया होता है, ठीक है, और उसको जो है ना, वो बाकायदा मुतय्यन उसके इल्म की बुनियाद पर और तकवा की बुनियाद पर हुकूमत वक्त जो है वो बाकायदा फिर एक मनसब देती है कि भाई अब आप जो है ना, वो दोनों के दरमियान के जो तनाजात वगैरह होंगे उनके आप फिर फैसले सादिर करेंगे, इस शख्स को काजी कहा जाता है। काजी वो नहीं होता कि जिसकी फैमिली नेम काजी चल रहा हो, जैसे बहुत सारे माशाल्लाह है ना जिनके लास्ट नेम काजी होता है, हमारे काजी भाई रहते हैं बराबर वाले मुल्क में, तो वो काजी मुराद नहीं है यहाँ पर, फैमिली वाला काजी नहीं, बल्कि ये वाला काजी, और ना जो है ना वो यहाँ पे मुराद जो है वो निकाह पढ़ाने वाले निकाह खान जो है उनको भी काजी कह देते हैं, वो भी मुराद नहीं है, बल्कि तफसीली उलूम को जानने वाला शरीयत के कवानीन का। अच्छा, तो उसके ऊपर छोड़ा कि भाई वो जिसको जो सदा समझे वो जारी करे, लेकिन एक अहम नुक्ता यहां पर क्या है कि इंसदादे जुर्म के लिए, क्योंकि शरीयत में जो भी सजाएं हैं दुनिया में जो नाफिज की जाती हैं शरीयत के अंदर, उनका एक मकसद है, वो मकसद क्या है? इंसदादे जुर्म, ठीक है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि जिसने सजा करी तो उसको जो है ना वो आप रुलाएं या उसको आप चिखवाएं, है ना, उसको तकलीफ दें ताकि वो चीखे, ठीक है ना। तो जितना उसने ज्यादा बड़ा किसी को सजा के जितनी बड़ा जुर्म किया होगा उतना ज्यादा उसको चिखवा रहे हैं, समझे तो ना। जैसे बच्चा जो है ना वो ज्यादा अम्मी को तंग करता है तो अम्मी उसको इतना जोर से मारती है कि वो जोर से चीखता है, और अगर कम तंग किया होता है तो कम मारती है तो वो कम जोर से चीखता है। तो मकसद क्या होता है कि ताकि उसको तकलीफ हो, राइट। शरीयत की सजाएं इसलिए है कि ताकि उसको तकलीफ हो, बस दैट्स इट, इट स्टॉप्स देयर। नो, मुजरिम को तकलीफ देना वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो असल मकसद नहीं है कि उसको तकलीफ दी जाए। वो तो जब उसको आप सजा देंगे तो तकलीफ तो होगी, है ना भाई। अगर तकलीफ ही ना हो तो फिर सजा कैसी, फिर तो गोया कि आप लड्डू खिला दें फिर उसको, चलो भाई तुमने ये वाला किसी को कतल किया तुम जो है ना वो गुलाब जामुन खा लो, है ना। मुझे गुलाब जामुन सबसे पसंद थी एक जमाने में, तो उसके बाद गुलाब जामुन ही सबसे पहले याद आती है। और तुमने किसी को फलानी वाली जो है वो तकलीफ दी थी, तुम जलेबी खा लो, और तुमने फलानी दी तो हम तुम्हें जो है ना वो फिर हम यानी सॉल्टिश चीज खिलाएंगे हम तुम्हें, ये तो मकसूद नहीं है ना भाई। तकलीफ देना मकसूद है ना उस, मतलब तकलीफ, सदा सदा तो तकलीफ ही को कहते हैं ना, लेकिन ये मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद है कि जुर्म खत्म हो जाए, अगले किसी को हिम्मत ना हो जुर्म करने की, यानी किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ये ना हो किसी, ये मकसूद है, ठीक है। तो इंसिदाद जुर्म उसको कहते हैं। सद का मतलब होता है कि दीवार खड़ी कर दी जाए, सद्दे सिकंदरी, सिकंदर आजम ने जो दीवार खड़ी करी थी, ठीक है, या सिकंदर आजम ने नहीं बल्कि वो जुल्करनैन ने जो दीवार खड़ी करी है ना, ताकि याजूज माजूज जो है ना वो उधर से इधर आ ही ना सके, तो रुकावट थी वो। उसी तरीके से दफ्ज़े सद इंसिदाद मतलब गुनाह खत्म हो जाए, रुकावट बन जाए गुनाह के सामने। तो ये भी जायज है कि हर जमाने और हर जमाने हर जगह और हर जमाने की इस्लामी हुकूमत शरीय कवायद का लिहाज रखते हुए काजियों के इख्तियार पर कोई पाबंदी लगा दे और जराइम की सजाओं का कोई खास पैमाना देकर उसका पाबंद कर दे, जैसे कि कुरून मुतअख्खरा में ऐसा होता रहा है, और इस वक्त तमाम ममालिक में तकरीबन यही सूरत राइज है। ये क्या मतलब कि काजी को शरीयत इस्लामी में तो इख्तियार दिया गया कि भाई आप जैसे भी चाहें सजा दें, मकसद जो है वो इंसदाद जर्म है, ठीक है। लेकिन ये भी जायज है कि जो ओवरऑल हुकूमत होती है ना वो अपने जो काजी हजरात हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स भी सेट करते हैं कि भाई आप इस तरह की सजा दे सकते हैं, इस तरह की सजा नहीं दे सकते, ठीक है। आजकल पूरी दुनिया में यही राइज है, काजी इज नॉट 100% मुतलकन मुतलकुल एनान नहीं है कि वो जैसी चाहे किसी को सजा दे दे, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस लिमिटेशंस दी हुई होती है। इसने कुछ लिखा है, इंसिदाद मीनिंग डिटरेंस, हाँ अंग्रेजी में इसको डिटरेंस कहते हैं, ठीक है, कि कोई कर ही ना सके, ऐसा लोग डर जाएं कि नौबत ही ना। अच्छा, तो ये पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। फिर आगे जो पैराग्राफ है उसको इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम है उसके हिसाब से वो पूरा हो चुका है। एहसास का लफ्ज हमने पढ़ लिया, लेकिन नहीं अभी अभी जो है ना वो आगे पढ़ेंगे, अद क्या चीज होती है, एहसास क्या चीज होती है, और ताजीर के बारे में अभी ऐसा पढ़ लिया कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो वो आप चैट विंडो के ऊपर लिख करके अभी बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलें, फिर हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।